इशिका वसुधा को थामे हुए नीचे बैठी हुई थी। उसे वसुधा को लेकर राजवंश विला जाना था, लेकिन बीच में आयशा और मालविका वहां पहुंच गईं। मालविका और आयशा ने इशिका को वसुधा के साथ अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें यही लगता था कि इशिका आयशा का दिन खराब करना चाहती है। इसी झड़प में वसुधा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसी बीच अभिमन्यु वहां पहुंचा तो आयशा और मालविका ने सारा दोष इशिका पर गढ़ दिया था। अभिमन्यु चेहरे से काफी इरिटेट नजर आ रहा था, क्योंकि उसे यहां अपनी काइन किडनैपर और दादी का इंतजार था। इशिका तो उसे वैसे ही पसंद नहीं थी। ऊपर से जैसे ही अभिमन्यु ने वसुधा को इशिका के पास देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई थी। अभिमन्यु के कानों में डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी, मिस्टर राजवंश, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, वसुधा जी की उम्र काफी हो गई है, ऊपर से उनकी हेल्थ कुछ खास अच्छी नहीं रहती। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा वक्त निकाल पाएंगी। वसुधा अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में थी। ऊपर से अभिमन्यु अपनी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करता था तो वो वसुधा थी। वो दौड़कर जल्दी से इशिका के पास गया और वसुधा जी को अपनी गोद में उठा लिया। इशिका ने अभिमन्यु से कहा, वीकनेस की वजह से दादी बेहोश हो गई है, ऊपर से उनकी दवाइयां भी खत्म हो गई हैं, अंदर से अगर दवाई मिल जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। अभिमन्यु ने किसी से कुछ नहीं कहा और वसुधा को गोद में उठाकर विला के अंदर चला गया। इशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो मन ही मन बोली, तो क्या ये सच में अभिमन्यु की दादी है? इतने दिनों तक मैं जिस अच्छे इंसान से बात कर रही थी वो ये था। नहीं, ये नहीं हो सकता। इशिका अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वो अभिमन्यु के पीछे जाने को होगी, तभी मालविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे डांटते हुए बोली, तुम अंदर कहाँ जा रही हो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। अभिमन्यु को इस तरह वसुधा को अंदर ले जाते देखकर आयशा के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने मालविका के पास आकर धीरे से कहा, कहीं ये सच में अभिमन्यु राजवंश की दादी तो नहीं? ये इस फैमिली में सबसे बड़ी मेंबर है और सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस घर की इतनी रिस्पेक्टेड वुमेन इशिका के साथ क्या कर रही थी? मालविका ने आयशा का हाथ सहलाकर कहा, तुम खामोखा इतना सोच रही हो, ये उसके पति की दादी ही है। सोचो, राजवंश फैमिली का शहर में कितना नाम है। अगर उनके विला के आगे कोई बूढ़ी औरत मर गई तो मीडिया उन पर सवाल उठाने लगेगा। तो क्या वो मीडिया के डर से उस औरत को अंदर लेकर गए थे? आई होप ऐसा ही हो, आयशा ने राहत की सांस लेकर कहा। मालविका ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर इशिका की तरफ देखने लगी, जिसकी नजरें अभी भी दरवाजे पर टिकी हुई थीं। मालविका ने इशिका से कहा, तुम्हारे पति की दादी जल्द ही बाहर आ जाएगी, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। वो औरत बीमार थी, तभी तुम जानबूझकर उसे राजवंश पिला के आगे लेकर आई, ताकि उसके बहाने उनके घर में घुस सको। मैं बोल रही हूँ, सुधर जाओ इशिका, वरना बचपन की तरह हड्डियाँ तोड़कर रख दूंगी। इशिका ने मालविका की तरफ देखकर बेपरवाही से सिर हिला दिया। वो बात कर रहे थे तभी अचानक राजवंश पिला का बड़ा सा दरवाजा खुला। उन तीनों का ध्यान उस तरफ चला गया। अंदर से नक्श बाहर निकल कर आया, उसके हाथ में काफी सारे गिफ्ट्स थे। बाहर आते ही नक्श का ध्यान सीधा आयशा पर गया। वो गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोला, कहाँ रह गई थी तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो गुस्से में उसे आगे कुछ कहता उससे पहले उसकी नज़र इशिका पर चली गई। उसे देखते ही नक्श के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। इशिका को चढ़ाने के लिए नक्श ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर इशिका के गाल पर किस करके कहा, कम ऑन बेबी, तुम्हें पता है ना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है तुम्हारे बिना रहना। सोचा था हाथ में गिफ्ट लेकर तुम्हारा अच्छा सा वेलकम करूंगा, मैं बस आ ही रही थी, आयशा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। वो अभी भी इस बात को लेकर परेशान थी कि बाहर जो बूढ़ी औरत थी वो कहीं सच में राजवंश फैमिली की सबसे बुजुर्ग सदस्य तो नहीं थी। नक्श से कन्फर्म करने के लिए आयशा ने हल्का मुस्कुराकर कहा, नक्श, बड़ी दादी कैसी है? तुमने बताया था उनकी तबीयत खराब रहती है, वो घर पर ही है ना? हाँ, वो घर पर ही रहती है, और कहाँ जाएगी? एक्चुअली उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट ज्यादा पसंद है, इसलिए विला के पीछे के हिस्से में एक बड़ा सा गार्डन एरिया और उनके लिए अलग विला बनाया हुआ है, वो उसी में रहती हैं, नक्श ने बताया, जिसे सुनकर आयशा को सुकून मिला। अब उसे श्योर हो गया था कि बाहर जो औरत थी वो राजवंश फैमिली की सदस्य नहीं थी। नक्श बात जरूर आयशा से कर रहा था, पर नजर बचाकर इशिका को देख रहा था। वो देखना चाहता था कि उसकी इतनी केयर और प्यार देखकर इशिका कैसे रिएक्ट करती है। इशिका को जलाने के लिए वो आयशा से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था, पर इशिका तो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। इशिका की नजरें दरवाजे पर थी। वो मन ही मन बोली, ओ गॉड, इसका मतलब क्यूट दादी का लापरवाह पोता अभिमन्यु राजवंश है। मुझे पहले पता होता तो मैं उससे कभी बात नहीं करती। यकीन नहीं हो रहा, जिस इंसान की समझदारी की मैं मन ही मन तारीफ करती थी वो ये घमंडी इंसान था। इशिका दरवाजे पर देख रही थी, तभी अचानक उसके सामने नक्श आकर खड़ा हो गया। उसने इशिका के सामने चुटकी बजाई और धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम मेरे ऑफर के लिए हाँ कहने के लिए तो नहीं आई हो ना? अगर हाँ कहना ही था तो कॉल कर देती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानती हो ना तुम कौन हो, और तुम्हारी जैसी लड़कियों को ऐसे इज्जतदार खानदान अपने घर में घुसने भी नहीं देते। नक्श की बात सुनकर इशिका ने जलती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम घर अंदर से देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। इशिका उसे कोई जवाब देती उससे पहले आयशा उनके पास आ गई। वो नक्श से बोली, नक्श तुम गलत समझ रहे हो, इशिका यहाँ तुमसे या किसी और से मिलने के लिए नहीं आई है, वो तो अपने पति की दादी के साथ यहाँ पर आई थी। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मिस्टर राजवंश उन्हें अंदर ले गए। क्या कहा तुमने पति? नक्श ने हैरानी से पूछा। उसे अभी तक इशिका की नकली शादी के बारे में पता नहीं था। आयशा इस बात को जानती थी। वो मौके का फायदा उठाते हुए बोली, हाँ पति, इशिका ने तुम्हें बताया नहीं क्या कि उसने शादी कर ली है? उनकी शादी को तो लगभग एक हफ्ता होने को आया है। नक्श ने गुस्से से इशिका की तरफ देखा और भौहें उठाकर कहा, तो तुमने शादी कर ली है? कौन है वो इंसान जिससे तुमने शादी की है? नक्श सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस वक्त वो एक धोखा खाए हुए आशिक की तरह बर्ताव कर रहा था। मैंने किससे शादी की है या मेरा पति कौन है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर ध्यान दो कि तुम किससे शादी करने जा रहे हो, इशिका ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है इशिका, सीधे सीधे जवाब दो, तुमने किससे शादी की है, मुझे भी तो पता चले, मेरे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उसने तुम्हें शादी के लिए हाँ कह दिया, नक्श ने चिल्लाकर कहा। आयशा ने बीच में दखल देते हुए जवाब दिया, ये तुम्हें किस मुँह से बताएगी, मालविका आंटी ने बताया कि वो एक सड़क छाप लड़का है जो ठीक से काम तक नहीं करता है। तो तुमने मुझे छोड़कर एक आवारा लड़के से शादी की है, बहुत अच्छी लग रही होगी ना तुम दोनों की जोड़ी, एक नाजायज लड़की और उसका आवारा पति, नक्श ने इशिका का मजाक बनाते हुए कहा। हाँ अब तो इसे भी वो पसंद नहीं आ रहा, तभी ये अभिमन्यु राजवंश के आगे पीछे घूमती रहती हैं। आयशा ने आग में घी डालने का काम किया, वो चाहती थी कि नक्श इशिका से पूरी तरह नफरत करे। डिस्गस्टिंग इशिका, तुम मेरे चाचू के पीछे यहाँ चली आई, अब मुझे सब समझ में आ रहा है तुम बार बार मेरे सामने कैसे आ रही हो, नक्श ने इशिका को इंसल्ट करना शुरू कर दिया।
इशिका चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी, वो देखना चाहती थी कि आखिर आयशा किस हद तक गिर सकती है। आयशा ने आगे कहा, इसे लगा कि ये अपनी खूबसूरती के चलते मिस्टर राजवंश को फंसा पाएगी। वैसे तो मैं बता दूं कि वो पहले से शादीशुदा हैं और तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखते तक नहीं हैं। इशिका ने आयशा को देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी और कहा, मुझ जैसी लड़कियां? तो तुम क्या खुद को बहुत क्लासी समझती हो? क्लासी लड़कियां ऐसी नहीं होती, तुम्हारी जैसी जिसकी सोच इतनी गिरी हुई है। कौन सी लड़की दूसरी लड़की को ये कहती है कि वो एक शादीशुदा आदमी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है? यू नो व्हाट, तुम्हारी सोच मुझे उन मोहल्ले वाली आंटियों जैसी लगती है जिनका काम सिर्फ दूसरों की लाइफ में दखल देना होता है। सॉरी टू से आयशा, लेकिन तुम बड़ी होने से पहले ही बूढ़ी हो चुकी हो। इशिका ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब भी जवाब देती थी सामने वाले का मुंह बंद कर देती थी। यही आयशा के साथ हुआ था। इशिका के जवाब ने उसका मुंह बंद करवा दिया, वो गुस्से में बस उसे घूर कर रह गई। नक्श, जो पहले से ही इशिका पर गुस्सा था, वो और ज्यादा फट पड़ा था। एक तो इशिका ने उसे ना कहकर किसी आवारा लड़के से शादी कर ली थी, ऊपर से वो अभिमन्यु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ये सब नक्श से सहा नहीं गया। नक्श ने दरवाजे के आगे खड़े गार्ड की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, इस लड़की का चेहरा गौर से देख लो, आगे से ये इस विला के आसपास भी नजर आए या अंदर घुसने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म करके अरेस्ट करवा देना, मैं देखता हूँ कि फिर कैसे ये अभिमन्यु चाचू तक पहुँचती है। नक्श के फैसले के बाद आयशा और मालविका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी दरवाजे के अंदर से एक हाउस हेल्पर बाहर आया, उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नज़र इशिका पर पड़ी तो वह उसके पास जाकर बोला, आप में से इशिका सिंघानिया है ना? इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया तो वो आगे बोला, आपको सर ने अंदर बुलाया है, अभिमन्यु सर ने। हाँ जरूर, इशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर नक्श की तरफ देखकर कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर चली जाऊं मिस्टर नक्श राजवंश। नक्श के पास कहने को कुछ नहीं था, अभिमन्यु के आगे कोई नहीं बोल सकता था क्योंकि घर पर उसी की चलती थी, कंपनी में भी ज्यादा शेयर्स उसी के पास थे, तो ना चाहते हुए भी कोई उसके सामने नहीं बोल पाता था। इशिका आगे बढ़ने लगी, गार्ड ने एक नज़र नक्श की तरफ देखा और फिर दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर पहले नक्श ने उसे ऑर्डर्स दिए थे कि इशिका को अंदर नहीं जाने देना था, पर अब इशिका पूरे सम्मान से अंदर जा रही थी। इशिका के अंदर जाने के बाद आयशा और मालविका भी नक्श के साथ अंदर जाने लगी। गार्डन एरिया में चलते हुए मालविका ने आयशा को समझाते हुए कहा, उन्होंने उसे इसीलिए अंदर बुलाया है ताकि उसके पति की दादी को भेज सके। अब वो उस बूढ़ी औरत के साथ बाहर थोड़ी ना आने वाले थे, कौन सी वो उनके लिए मायने रखती हैं? काश ऐसा ही हो आंटी, आयशा ने धीरे से जवाब दिया। वो सब लिविंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे जहां बाकी लोग बैठे हुए थे। जैसे ही इशिका दरवाजे के पास पहुंची, आयशा और मालविका भी उसके पास आ गई थीं। मालविका ने सबके सामने उसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर हल्की तेज आवाज में कहा, तुम यहां जिस काम के लिए आई हो वो करो और निकलो यहां से। तुम कौन हो अपनी पहचान मत भूलना। तुम जैसी घटिया लड़कियां यहां कदम रखने के लायक नहीं होती हैं। ये सच था कि इशिका मालविका की बेटी नहीं थी, तभी वो जानबूझकर उसे ऐसे वैसे शब्द बोलकर नीचा दिखाती थी। जैसे ही मालविका के शब्द वसुधा के कानों में पड़े, वो अपनी जगह से खड़ी होकर तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवंश खानदान की बहू को घटिया कहने की। वसुधा की आवाज सुनकर मालविका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सारी फैमिली वहीं पर मौजूद थी और वसुधा बड़े से काउच पर अभिमन्यु के साथ बैठी हुई थी। उसका ऑरा और एटीट्यूड देखकर साफ था कि वो राजवंश खानदान की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला थी, जिसकी वो सभी रिस्पेक्ट करते थे। भाई, मालविका तो गई, शायद यहां पर अभिमन्यु और ऋषिका की शादी का राज भी खुल जाए। ये तो अगले चैप्टर में पता चलेगा। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी।